4 जुलाई दिन भर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। नरेंद्र मोदी कल करेंगे अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल। चुनाव वाले प्रदेशों के कई लोगों को शामिल किए जाने की संभावना।
ये बहुत अच्छा मौका है एक फेर बदल करने का, सरकार में भी एक नई ऊर्जा लाना, डायनेमिज्म लाना, 2019 को मद्देनजर रखे।
अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी, और बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी क्यों उन लोगों को कानूनी मदद दे रहे हैं जिन पर भारत में दहशत फैलाने का है आरोप।
हिंदुस्तान के दस्तूर और आईन में बुनियादी हुकूक है कि हर हिंदुस्तानी को एक वकील मिलना चाहिए।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, तृप्ति श्रीवास्तव से। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसकी आधिकारिक सूचना राष्ट्रपति भवन को दे दी गई है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार यानी 5 जुलाई को 11 बजे राष्ट्रपति भवन में नए मंत्री शपथ लेंगे। मोदी ने कुछ दिन पहले ही मंत्रियों के कामकाज का लेखा जोखा लिया था और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही जहां कुछ राज्य मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है, वहीं कुछ को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। फेरबदल में कुछ सांसदों का प्रमोशन होने की संभावना है। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से एक या दो को मंत्री बनाना तय समझा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के अलावा 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इन लोगों को 2006 में एक कॉन्ट्रैक्ट देने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन्हें अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इराक में हुए बम धमाकों को लेकर प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने लापरवाही करने वाले सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया है। रविवार को बगदाद में हुए हमलों में कम से कम 165 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री अबादी ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे धमाकों से निपटने के लिए स्थानीय स्वयंसेवियों की भी मदद ली जाएगी। धमाकों के बाद हमलों से बचा न पाने के लिए सरकार की नाकामी को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। इराकी संसद के सदस्य और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुवफ्फाक अल रुबाई ने लोगों के गुस्से को जायज ठहराते हुए कहा, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को आंतरिक और रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय के भ्रष्ट लोगों की सफाई करने की जरूरत है। इसके साथ साथ खुफिया एजेंसी में भी भ्रष्ट लोग घुस चुके हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों के पास सरकार से नाराज होने की वाजिब वजह है। मुवफ्फाक अल रुबाई के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से बाहर निकालने के लिए जबरदस्त अभियान चलाने वाले यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी यानी यूकेआईपी के नेता नाइजल फराज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जनमत संग्रह के बाद यूके के यूरोपीय यूनियन से अलग होने पर फराज का कहना है कि मैंने अपना काम कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कभी भी राजनीतिज्ञ नहीं बनना चाहते थे और अपना बिजनेस छोड़कर राजनीति में सिर्फ ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से बाहर निकालने के मकसद से आए थे। बांग्लादेश पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शुक्रवार को राजधानी ढाका में हुए इस्लामिक हमले की जांच के मद्देनजर पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों ही घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। इनमें से एक वो हमलावर है जो बच गया था। खबर आई थी कि एक और मारे गए हमलावर, जिसका नाम रोहन इम्तियाज है, बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी के अधिकारी का बेटा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे अपने मंत्रिपरिषद में बहुप्रतीक्षित फेरबदल करेंगे, जिसमें कुछ नए चेहरों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। पिछले कई दिनों से मंत्रिपरिषद में फेरबदल किए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। मंत्रिपरिषद के इस विस्तार और फेरबदल में कुछ नए चेहरे शामिल किए जाने और कुछ को पदोन्नति दिए जाने की संभावना है। ऐसा भी माना जा रहा है कि खराब प्रदर्शन के कारण कुछ मौजूदा मंत्रियों की विदाई भी हो सकती है। विनीत खरे की रिपोर्ट।
आज सुबह जब से प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो प्रमुख फ्रैंक नोरोन्हा ने ट्वीट किया कि कल 11 बजे कैबिनेट विस्तार होगा, तभी से विस्तार के कारणों और नामों पर कई दिनों से लगने वाले कयास तेज हो गए। रिपोर्टों के मुताबिक भाजपा प्रमुख अमित शाह भी नेताओं से मिल रहे हैं, जिसके कारण ये भी कहा जा रहा है कि सरकार के साथ साथ पार्टी में भी बदलाव किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के कैबिनेट में भी 66 मंत्री हैं और कानून के मुताबिक इसमें 82 मंत्री हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट में खाली जगहों को भी भर सकते हैं, जैसे सर्बानंद सोनोवाल के असम का मुख्यमंत्री बन जाने से खेल मंत्रालय खाली हो गया था। माना जा रहा है कि कैबिनेट में विस्तार के दौरान निगाहें उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर होंगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जिन नामों को नए कैबिनेट में शामिल होने पर बात चल रही है, उनमें उत्तर प्रदेश के अपना दल की ओबीसी नेता अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। पटेल का सरकार में शामिल होना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भाजपा ओबीसी समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। कैबिनेट विस्तार में SS अहलुवालिया, विजय गोयल, बीकानेर से सांसद PP चौधरी, गुजरात से राज्यसभा सांसद पुरुषोत्तम रूपाला, महाराष्ट्र से रामदास अठावले और उत्तर प्रदेश से महेंद्रनाथ पांडे और कृष्णराज के नामों की भी चर्चा है। कैबिनेट विस्तार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीका के 4 देशों के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। मई 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार में ये दूसरा कैबिनेट विस्तार होगा। पहला विस्तार नवंबर 2014 में हुआ था।
विनीत खरे ने वरिष्ठ राजनीतिक समीक्षक नीरजा चौधरी से संपर्क किया और पूछा कि मंत्रिमंडल में बदलाव का क्या कारण मानती हैं आप।
कारण नंबर एक तो ये है कि जो हाल की जीत हुई है असम की और जो कि भाजपा ने अपनी बढ़त बढ़ाई है, हालांकि सीटें नहीं आई वेस्ट बंगाल में और केरल में, सीटें उस तरह से मतलब जैसे असम में सरकार जीती वैसे नहीं, तो लेकिन एक बढ़त है उनकी, वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो इससे उत्साहित हो के पार्टी में भी एक नई स्फूर्ति आ गई, नई ऊर्जा आ गई है। और नरेंद्र मोदी जो थोड़े डाउन हो गए थे 2015 में दिल्ली और बिहार के बाद, तो ये बहुत अच्छा मौका है एक फेर बदल करने का, सरकार में भी एक नई ऊर्जा लाना, डायनेमिज्म लाना, डेड वुड को निकालना और दूसरी तरफ से अपनी टीम जो उनकी अपनी टीम हो, उनके प्रति लॉयल हो, उसकी तैयारी करना 2019 को मद्देनजर रखे। तो ये एकदम राइट टाइम है, चुनाव अभी एक साल टाइम है, 2017 के अहम चुनाव होने वाले हैं जो कि भाजपा के लिए बहुत महत्व रखते हैं। तो अगर कुछ नाराजगियां भी होती हैं इस समय तो झेल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ग्रूमिंग करनी है तो उसके लिए टाइम है, और अगर आपको सिग्नल भी देना है, इशारा भी करना है कास्ट को, कम्युनिटी को कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं, तो वो भी टाइम है, तकरीबन एक साल। ये एक्सरसाइज अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच की है, मैं जो कहती हूँ जोड़ी नंबर एक है देश की आज। अब देखने लायक चीज होगी कौन कहाँ जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का स्टाइल ऐसा है कि अनलाइक इन द पास्ट, जबकि आप 2-3-4 दिन पहले भी मीडिया वाले लिख देते थे, पूरी लिस्ट निकाल देते थे कि कौन कहाँ जा रहा है, अब भी अटकलबाजी है, पर जैसे कि मिनिस्टर्स और सीनियर लोग भी पार्टी की कहते हैं कि एक्चुअली नरेंद्र मोदी और अमित शाह को छोड़ के किसी को रियली पता नहीं है कौन आ रहा है और कौन जाने वाला है।
क्या ये बहुत सिंप्लीफाइड एक सोच नहीं है कि चुनाव आने वाले हैं, हमने वहां से 2 अलग अलग कास्ट जो आपको लगता है कि असर करेंगे, उनके 2 नेताओं को आपने कैबिनेट मंत्री बना दिया और उम्मीद की जाए कि उसका हमें फायदा होगा, ये जो सोच है नेताओं की ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड नहीं लगती है?
नहीं, ओवर सिंप्लीफाइड है, ये कांग्रेस की भी सोच होती थी कि भाई इशारा करना, किसी को वहां बिठा दिया तो उस दलित को दे देना, बैकवर्ड को दे देना, तो अपने से आ जाएंगे, लेकिन वो सिंबॉलिक है, उससे होता नहीं है आज के जमाने में, अनलेस, और बड़ा अनलेस वो है कि आप फॉलो अप कितनी मेहनत से करते हैं उन कम्युनिटीज के साथ।
ये थी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार समेत 5 लोगों को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र कुमार को कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते गिरफ्तार किया गया है। खबरों के अनुसार प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर 50 करोड़ के घोटाले का आरोप है। पिछले साल 15 दिसंबर को CBI ने राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर पर छापे मारे थे। उनके खिलाफ पद का दुरुपयोग करने का एक केस दर्ज किया गया था। CBI के प्रवक्ता RK गौर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा,
सीबीआई ने आज वरिष्ठ लोक सेवक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एक अन्य कर्मी, दिल्ली सरकार, दिल्ली की प्राइवेट कंपनी के दो तत्कालीन निदेशकों एवं एक प्राइवेट व्यक्ति सहित पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उक्त वरिष्ठ लोक सेवक एवं अन्यों पर घुसखोरी एवं आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग कर दिल्ली सरकार के ठेकों को आवंटित करने में दिल्ली की प्राइवेट कंपनी का पक्ष लेने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी व्यक्तियों को दिल्ली की नामित अदालत में कल पेश किया जाएगा। आगे की जांच जारी है।
सीबीआई प्रवक्ता आरके गौर। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के इस कदम को राजनीति से प्रेरित और बदले की कार्रवाई बताया है।
दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में काम करने वाले प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम अरेस्ट हो गए। डिप्टी सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, उनको अरेस्ट कर लिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ऑफिस, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। पूरे के पूरे चीफ मिनिस्टर ऑफिस को पैरालाइज करने के लिए नहीं किया जा रहा है। आज क्या था ये, इसकी टाइमिंग देखिए। कल पंजाब से एक सर्वे निकल के आता है कि आम आदमी पार्टी को 117 में से 100 सीटें मिल रही हैं। एक जबरदस्त रैली होती है, गोवा और गुजरात से जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है, और उसका बदला दिल्ली के लोगों से बदला कि दिल्ली के लोगों ने मोदी सरकार को, मोदी जी की पार्टी को वोट नहीं दिया। हम अनऑथराइज कॉलोनी में काम नहीं होने देंगे, हम आपके चीफ मिनिस्टर ऑफिस को नहीं चलने देंगे, हम आपके एजुकेशन में काम नहीं होने देंगे, ये बदला लिया जा रहा है दिल्ली के लोगों से।
काफी नाराज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। इस समय अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं। आज उन्हें मलेरकोटला पहुंचना था। आज जब वो स्वर्ण मंदिर से बाहर निकले तो उनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए। आइए सीधे चलते हैं रविंदर सिंह रोबिन के पास। रविंदर, बताएं क्या समाचार है वहां से।
जैसा आपने बताया कि वो अरविंद केजरीवाल 3 दिन के दौरे पर हैं पंजाब के, और वो उनका दौरा कल से शुरू हुआ जब वो हरिमंदर साहब मत्था टेकने गए। वहां पे थोड़ा सा सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट किया गया उनके खिलाफ, लेकिन किसने किया ये अभी किसी ने क्लेम नहीं किया, ना तो वो अकाली दल वालों ने ना कांग्रेस वालों ने। हालांकि वो अलग अलग जगह पे इनके खिलाफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी खदशे जितला रहे हैं और केजरीवाल को बाहर का आदमी बता रहे हैं, इस तरह की बातें तो हो रही हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट किसने किया वो नहीं किसी ने खुलासा किया। उसके बाद वो केजरीवाल कल अमृतसर में उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया यूथ का, जिसमें काफी संख्या में लोग तो आए थे, लेकिन उस मैनिफेस्टो के बीच में केजरीवाल हालांकि मीडिया के साथ सीधा मुखातिब नहीं हो रहे अपने इस दौरे में, अभी 2 दिन का दौरा हो चुका है उनका, तो उस स्टेज को उन्होंने यूज किया जो मलेरकोटला में पिछले दिनों में कथित तौर पर कुरान शरीफ के पन्नों को पढ़कर उसकी बेद भी की गई थी। उसका जवाब उन्होंने उस पर दिया कि उन्होंने कहा कि ये उनके MLA को नरेश यादव जी को फंसाया जा रहा है, और ये खास तौर पे ये घटना को अंजाम दिया गया ताकि केजरीवाल की यात्रा को विफल किया जाए, यहाँ पे केजरीवाल को या उनको उनकी पार्टी को बदनाम किया जाए। उसको उसमें उन्होंने उस स्टेज पे जवाब दिया। आज भी उन्होंने गुरदासपुर में क्रिश्चियंस की एक छोटी सी इवेंट थी, वहां पे गए, जलंधर में गए, अभी मलेरकोटला में वो पहुंचे हैं अभी से कुछ देर पहले ही, और उन्होंने इफ्तार पार्टी में भी इस बात का खुलासा किया और जिक्र किया कि बाकी पार्टियां जो हैं उसमें भाजपा है, अकाली दल है और कांग्रेस है, ये तीनों मिल गई हैं और तीनों मिलके एक आम आदमी पार्टी से डर कर इस तरह की हरकत कर रही हैं। वो अपने आप को बिल्कुल साफ बता रहे हैं, अपनी पार्टी को साफ बता रहे हैं, और उनका ये कहना है कि उनकी पार्टी के किसी भी बंदे ने इस तरह की हरकत नहीं की है।
अच्छा रविंदर, ये बताएं किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है वहाँ, आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो इस दौरे को किस तरह से ले रहे हैं।
अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताता हूं कि अगर मैं पिछले 25 सालों से इलेक्शन कवर कर रहा हूं, तो किसी भी पार्टी के लिए, एक नई पार्टी के लिए जरूरी होता है कि अपनी पहचान बनाना, तो इसमें अब कोई दोराय नहीं रह गई है कि आम आदमी पार्टी की पहचान पंजाब के लगभग हर घर के हर बच्चे से लेके बड़े तक झाड़ू का नाम मालूम है और केजरीवाल का नाम मालूम है। तो जहां तक पहचान की बात है वो तो ये उसमें मैं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने अपनी सफलता जरूर हासिल की है, लेकिन अकाली दल यहाँ की एक बहुत पुरानी और बड़ी पार्टी है जो कई टाइम पर यहाँ पे काबिज रही है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उन बड़ी पार्टियों के साथ टक्कर 2017 में आम आदमी पार्टी अपनी पहचान को किस तरह वोटों में तब्दील कर पाएगी ये तो 2017 ही बता पाएगा, लेकिन ये जरूर है वो अपनी पहचान बना पाए हैं यहाँ।
बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर सिंह रोबिन आपका।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
बीबीसी हिंदी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। हैदराबाद के सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक वकील ने इसलिए सरूर नगर पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज की है कि उन्होंने NIA द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों को कानूनी सहायता देने का फैसला किया है। हमारे साथी राजेश जोशी ने असदुद्दीन ओवैसी से संपर्क किया और पूछा कि आपने बयान दिया है जिसका लबोलबाब ये निकल रहा है कि आप उन लोगों को कानूनी मदद देंगे जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हिंदुस्तान में दहशत फैलाई है, क्या कहना है आपका?
आपने सही सवाल किया, आपने सही कहा कि उन लोगों पर इल्ज़ाम है, वो मुल्ज़िम अभी करार नहीं दिए गए अदलिया से। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के दस्तूर और आईन में बुनियादी हुकूक है कि हर हिंदुस्तानी को एक वकील मिलना चाहिए जो उसका मुकदमा लड़े कोर्ट में। ये फंडामेंटल राइट्स है हमारे लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में CRPC 304 है, Article 38(1) है, ये तमाम ये कह रहे हैं कि एक मुलजिम को जिस पर इल्जाम है उसको वकील मिलना चाहिए। तो ये आसमान सर पर उठाने की जरूरत तो नहीं है इसमें। मेरे पास इन मुलजमी जिन पर इल्जाम लगाया गया है, इनके अपराध खानदान आकर कहा है कि ये हमारे लोग बेकसूर हैं और हमको वकील की जरूरत है। मैंने कहा कि ठीक है, हमारे पास लीगल सेल है, वो वकील वो देख लेगा और जो भी एविडेंस होगा उसी की बुनियाद पर तो अदलिया फैसला करेगा कि कोई मुलजिम है या कोई बेकसूर है।
बहुत आपने बात साफ कह दी अपनी तरफ से, ये बात बिल्कुल जायज है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आपका जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, आप पर जो तनकीद हो रही है वो ये कि जब बात ये सिर्फ मुसलमानों पे आती है तब ओवैसी साहब कहते हैं कि उनका हकूक हैं, उनके अधिकार हैं और कर्तव्य हैं, लेकिन साहब बहुत सारे ऐसे हिंदू भी जेलों में बंद हैं जिन पर दहशतगर्दी या बम फोड़ने का इल्ज़ाम लगा है, वो भी अभी तक कन्विक्टेड क्रिमिनल्स नहीं हैं, उन पर इल्ज़ाम प्रूव नहीं हुआ है, क्या आप उनके भी मदद करेंगे?
मेरे दरवाजे हर तबके के और हर मजहब के, हर दलित के लिए, मुसलमान के लिए खुले हैं और मुझे यकीन है कि अगर कोई कट्टर RSS का मेरे दहलीज पर कदम रखेगा तो वो सच्चाई को अपनाएगा और नफरत को उसी वक्त छोड़ देगा। मैं उन लोगों को दावत देता हूं जो ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कभी मेरे दफ्तर को दारुस्सलाम जिसका नाम है वहां पर आकर देखें कि कितने लोग आते हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने गैर मुस्लिम हैं, कितने दलित हैं, और हम वहां किसी से भी ये नहीं पूछते कि तुम्हारा मजहब क्या है। अल्लाह ने हमको इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा आवाम की खिदमत करने के लिए, और हम ये नहीं देखते कि कौन हमको वोट दिया या कौन किस मजहब का है या नहीं। सुनिए, अगर बहसियती MP मेरे एक कलम हिलाने से, मेरी जबान हिलाने से अगर किसी हिंदू का फायदा हो सकता है तो ये मेरे लिए बाइज़े इज्जत है और बाइज़े बरकत है, मैं ये काम जरूर करूंगा। मगर ये कहना कि मैं सेलेक्टिवली कर रहा हूँ, और आखिर में आपका एक सवाल आपको और आपके सुनने वालों को समझने के लिए बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जेलों में करीब 60,000 मुसलमान अंडर ट्रायल्स हैं, जिनका परसेंटेज आप निकालेंगे तो 21% है। ये NCRB का डेटा है, कोई OIC का डेटा नहीं है। अगर इनको लीगल एड मिलती तो फिर इतने जेल में क्यों होते, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो अंडर ट्रायल 5 साल 6 साल मुकम्मल कर चुके हैं उनको स्टेट को कहा कि निकालो उनको जेलों से।
ओवैसी साहब, मैंने कभी नहीं सुना पहले इससे, मैं बहुत ही जितनी भी मेरी जानकारी है उसके बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ, कभी आपसे ये नहीं सुना कि बस्तर में जेल में जितने आदिवासी बंद हैं उनके पक्ष में आप कभी बोले हों या आपने आवाज़ उठाई हो। आखिर ये क्यों होता है? आप तो माशाल्लाह कहते हैं कि बड़े आप तो सेक्युलर हैं और आप फ़र्क नहीं करते हैं हिंदू मुसलमान दलित वगैरह में, तो आपकी आवाज़ उन आदिवासियों के पक्ष में क्यों नहीं निकलती जो बस्तर में बंद हैं, वो उन मुसलमानों उन हिंदुओं के पक्ष में क्यों नहीं निकलती जो तमाम जेलों में बंद हैं?
नहीं नहीं, आप अपना रिसर्च सही नहीं किए हैं। पार्लियामेंट की मेरी स्पीच उठाकर देखिए कि बस्तर में वहाँ के ट्राइबल लोगों को जिस तरीके से मारा और पीटा गया, उनके वाकयात को मैंने पार्लियामेंट में अपने स्पीच में उठाया। वहाँ पर
आप उनको लीगल एड देंगे?
सुनिए, और ना सिर्फ वो बल्कि मैंने उन आर्टिकल्स का हवाला दिया जिसमें बात कही गई कि खवातीन पर किस तरह वहाँ पर जुल्म हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मुझे आकर कोई कहेगा कि भाई साहब आप एमपी हैं और आपके कुछ बोलने से मुझे इंसाफ मिल सकता है तो यकीनन मैं काम करने को तैयार हूं।
भरोसा जगाना, भरोसा जगाना आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है। कोई ऐसा साध्वी प्रज्ञा हो या दूसरे हो जिन पर इल्जाम अभी प्रूव नहीं हुआ है, क्या आप उन पर भरोसा जता सकते हैं या उनका
भरोसा जता
आप पर, आप पर उनका भरोसा कैसे जताएगा जब आप ये कहते हैं कि साहब मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा।
हाँ बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है क्या।
नहीं बिल्कुल नहीं,
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, मैं जनगण मना पढ़ता हूँ फखर से, बराबर पढ़ूंगा और बड़ी इज्जत के साथ पढ़ूंगा और खड़े रहूंगा बराबर। ये मेरे लिए बहसत हिंदुस्तानी, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है।
लेकिन आप
जो नारों का जिक्र हमारे दस्तूर में नहीं है, मैं हरगिज नहीं,
नहीं दस्तूर की बात नहीं हो रही साहब यहाँ, ना तो इस्लाम की बात हो रही ना दस्तूर की बात हो रही, बात हो रही है मादरे वतन जिंदाबाद, जब आप कह सकते हैं भारत माता की जय कहने में क्या हर्ज है।
नहीं बोलेंगे आप, 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 आप आपकी नजर में आप कहिए, मैं आपकी तारीफ करूंगा। अगर आप मेरे सामने ठहर के बोलेंगे तो मैं बोलूंगा बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल बोलिए आप।
अच्छा उर्दू जबान में कह लेंगे, उर्दू जबान में
मैं नहीं बोलूंगा, मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाला हूं।
जय कहना इबादत तो नहीं है, जिंदाबाद कहना है।
हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने मुझे कोई इतराज नहीं है, हिंदुस्तान जिंदाबाद
और मादरे वतन जिंदाबाद,
जय जय हिंद कहने में कोई इतराज नहीं है मुझे, बिल्कुल कोई इतराज नहीं है।
लेकिन
अगर मुझे इतराज इस बात का है कि ये बोलेंगे तो ही आप हिंदुस्तानी हैं, आपकी नेशनलिज्म सही है, मेरा नेशनलिज्म कोई टेस्ट नहीं कर सकता। जितना बावखार और बाइज्जत शहरी मैं हिंदुस्तान का हूँ वो तमाम लोग मेरे साथ हैं या नहीं मालूम, मुझे अपनी वफादारी पर किसी को शक करने का मुझे अख्तियार नहीं है, ना मैं किस पे करूंगा।
असदुद्दीन ओवैसी से बात कर रहे थे राजेश जोशी। आज सोमवार है और आज के दिन आपको इंतजार रहता है अपने पत्रों का, आपके पत्रों के साथ हैं राजेश जोशी एक बार फिर और अमरेश द्विवेदी।
आपकी राय, नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज मेरे साथ जो सज्जन हैं आपको उम्मीद नहीं होगी कि वो कौन हैं, चलिए उनसे खुद ही पूछते हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अमरेश द्विवेदी है, मेरा भी नमस्कार स्वीकार करिए।
आज न तो स्वाति बख्शी हैं और न ही वंदना है, आज अमरेश द्विवेदी हैं जिनको आप कार्यक्रम में सुनते हैं, वो कार्यक्रम प्रेजेंट करते हैं, लेकिन आज चिट्ठियों के साथ शामिल हैं इस कार्यक्रम में। अमरेश जी, मैं आपके पास देख रहा हूँ सिर्फ चिट्ठियाँ हैं, ईमेल कुछ भी नहीं है।
जी, आज हमारे साथ कुछ तकनीकी दिक्कत थी, इस वजह से हम ईमेल शामिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चिट्ठियाँ काफ़ी हैं।
बताइए पहली चिट्ठी क्या है।
पहली चिट्ठी है, लिखने वाले हैं, इन्होंने अपना पूरा नाम नहीं लिखा है लेकिन जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, MKK पिल्लई हैं पंडलम केरल से।
केरल से सबसे पहली चिट्ठी आई है
जी। इन्होंने ब्रेक्सिट के बारे में जो हमारा कार्यक्रम था, आपने ही प्रस्तुत किया था वो कार्यक्रम जिस दिन ये रेफरेंडम हुआ था, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी तारीफ की है। लिखा है कि मैं अपनी तरफ से भी कुछ कहना चाहता हूं। इन्होंने काफी बातें लिखी हैं लेकिन कुछ मैं पढ़कर सुना देता हूं कि ब्रिटेन की अभिनव पीढ़ी प्रायः उदास, कामचोर तथा अधिक विलासी जीवन शैली की शिकार है। ये प्रायः अप्रवासियों पर आश्रित होकर शरणार्थियों को प्रोत्साहन देते हैं, अप्रवासियों पर निर्भरता को छोड़कर ये परिश्रम के मार्ग में आए, ये उन्होंने सलाह दी है, लेकिन कार्यक्रम की उन्होंने काफी तारीफ की है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका केरल में रह करके और हिंदी में आपने चिट्ठी भेजी है कि हमें बहुत खुशी है। आपकी राय शामिल हो ही चुकी है, इस पर हम क्या टिप्पणी करें, आपका नज़रिया है, लेकिन कार्यक्रम आपको पसंद आया, इसका धन्यवाद।
जी राजेश, अगली चिट्ठी लेते हैं, ये हैं रामेश्वर जी चंदिया जोरी देवघर झारखंड से। ब्रेक्सिट के बारे में अपनी राय लिखी है, इन्होंने लिखा है कि BBC इंडिया बोल का जो कार्यक्रम था ब्रेक्सिट पर, उसके आलोक में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का दिल्ली को पूर्ण राज्य के लिए जनमत संग्रह कराने के बारे में इन्होंने लिखा है। बहुत लंबी चिट्ठी है लेकिन इसका निचोड़ ये है कि ये उससे बहुत सहमत नहीं है। इन्होंने आखिर में लिखा है कि रेफरेंडम का रोग देश को क्षत विक्षत करने के लिए खाद पानी का काम करने के लिए यथेष्ट होगा।
इन्होंने शायद और जो हिंदुस्तान में विवादास्पद मुद्दे हैं उनका जिक्र किया है चिट्ठी में, मैं देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, ये झारखंड से चिट्ठी है, इनका नाम दोबारा से बता दीजिए।
इनका नाम है रामेश्वर जी।
जी रामेश्वर जी, आपका शुक्रिया, आप लगातार हमें सुनते रहें और अपनी राय इसी तरह प्रकट करते रहें।
एक और चिट्ठी राजेश मैं देख रहा हूँ, रामचंद्र यादव हैं ये, भगवाड़ी खुर्द ग्राम अलवर से इन्होंने चिट्ठी लिखी है, राजस्थान से। ये लिखते हैं कि आपकी निष्पक्षता और विषय की समग्रता, पारदर्शिता तथा सटीकता का मैं हमेशा से कायल रहा हूँ। पिछले डेढ़ दो साल से इसमें भारी कमी आई है, गिरावट की बात कर रहे हैं,
आलोचना कर रहे हैं
जी। आप पहले सभी समाचारों को समग्रता तथा निष्पक्षता एवं अनिवार्यता के साथ प्रस्तुत करते थे, ऐसा इन्होंने लिखा है। फिर आगे लिखते हैं कि अब तो आपके कार्यक्रम का एक ही सूत्र रह गया है, हिंदू मुस्लिम संबंध। और इसको आगे इन्होंने थोड़ा सा विस्तार भी किया कि क्या रोज़ रोज़ दोनों समुदायों की कड़वाहट भरी कहानियों को सुनाने से आपसी भाईचारा बन जाएगा, ऐसा कह रहे हैं ये।
अलवर राजस्थान से, नाम बताइए।
रामचंद्र यादव।
रामचंद्र यादव जी, देखिए पिछले डेढ़ दो वर्षों से जो कुछ हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है या आसपास हो रहा है, हम उससे इतर बात कैसे कर सकते हैं। कभी घर वापसी का मुद्दा आता है, कभी मुद्दा आता है भारत माता की जय का, कभी मुद्दा आता है गौमांस खाने का या बीफ का। ये समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उन पर ही हम रिपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ खास नहीं बदला है डेढ़ दो साल में, जो जो घटनाएं होती हैं उस पर बीबीसी ईमानदारी से अपनी रिपोर्टिंग करता है। अगर बांग्लादेश में मासूमों का कत्ल होता है तो उस पर भी बीबीसी उसी तरह से रिपोर्ट कोशिश करते हैं कि उस तरह से हो। तो ऐसा कुछ डेढ़ दो साल में बदला नहीं है जो आपको नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल यह है कि अगर हम अपने समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उनको अपने कार्यक्रमों में उनकी झलक ना मिले तो फिर वो थोड़ी कम ईमानदारी होगी। और मैं देख रहा हूँ कि ये पोस्ट कार्ड पीले पीले आपके हाथ में है क्या
जी? ये असद अली हैं, अक्सर चिट्ठियां लिखते हैं
रामपुर से,
रामपुर उत्तर प्रदेश।
मुझे याद हो गया बिल्कुल, असद अली साहब हमारे बड़े रेगुलर श्रोता हैं, चिट्ठियां भी लगातार लिखते हैं। इनको लगता है कोई शिकायत होगी कि हम इनकी चिट्ठी शामिल क्यों नहीं करते हैं।
हाँ, इन्होंने ये आगे लिखा है, लेकिन पहले इन्होंने जो बात लिखी है उसकी चर्चा करना चाहूंगा। ये लिखते हैं कि विवेचना दुनिया जहाँ बीबीसी इंडिया बुल कार्यक्रम फिलहाल कमजोर पड़ गए हैं,
सभी कार्यक्रम
जी, ये तीनों ही कार्यक्रमों का नाम ले रहे हैं कि अच्छे विषयों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करें, ऐसा इनका कहना है। और फिर आगे लिखते हैं कि काफ़ी मेहनत से चिट्ठी लिखते हैं और उसको काट दिया जाता है या उसको पढ़ा नहीं जाता, ऐसी बात ये लिख रहे हैं।
असद भाई, अगर आप बहुत ठोस तरह से लिखेंगे कि कौन सा कार्यक्रम में आपको कौन सी चीज़ पसंद नहीं आई, हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे।
राजेश जी, अगली चिट्ठी मैं लेना चाहूँगा, ये है अकरम हुसैन प्रिंस, लिखते हैं अपना नाम, मेहसौल सीतामढ़ी बिहार से। ये कहते हैं कि बीबीसी से प्रसारित इंडिया बोल कार्यक्रम में फ़ोन लगाते लगाते थक जाता हूँ, कभी कभी रिंग तो होता है मगर रिसीव नहीं होता है जी।
ये तो बहुत ही इनकी जायज़ बात है। अकरम हुसैन प्रिंस साहब, आपने जो 1, 2, 3, 4 शायद रंगों में ये चिट्ठी लिखी है, लाल, हरा और काला, कम से कम 3 रंग तो है ही हैं। आपकी बात ये मैं समझता हूँ कि आप कोशिश करते होंगे लेकिन फ़ोन नहीं लग पाता है, ये हमारी भी मजबूरी है। अगर आप बुरा ना माने तो हमें आप अपना फ़ोन नंबर लिख के भेजें, हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे संपर्क करें इंडिया बोल में। चलते चलते पता बता देते हैं, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल से अगर हमें अपनी चिट्ठी लिखना चाहें तो लिखिए hindi.letters@bbc.co.uk पर। नमस्कार।
आपकी राय। और अब विम्बलडन। विम्बलडन को शुरू हुए आज पूरा एक हफ्ता हो गया है। आज कौन कौन से मैच हो चुके हैं या होने वाले हैं, नजर रखे हुए हैं आदेश गुप्ता, बताइए कोई उलटफेर तो नहीं हुआ अब तक?
जी देखिए, आपने बिल्कुल दुखती नस पर हाथ रखा क्योंकि उलटफेर का दौर आज भी जारी रहा। दरअसल जापान के केई निशिकोरी नौवीं वरीयता हासिल क्रोएशिया के मारिन चिलिस से जब दूसरे सेट में 5-1 से पीछे थे तभी निशिकोरी मुकाबले से हट गए। हालांकि इससे पहले मारिन चिलिस 6-1 से पहला सेट जीत चुके थे, तो इसे भी एक उलटफेर कहा जा सकता है। महिला एकल वर्ग में चौथी वरीयता हासिल जर्मनी की एंजेलिक कर्बर ने जापान के मेसारी दोई को 6-3, 6-1 से मात दी। और स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर अमेरिका के स्टीव जॉनसन से 6-2, 6-3, 7-5 से जीत चुके हैं एंडी मरे। और उधर महिला वर्ग में विलियम्स बहनों के मुकाबलों पर सबकी नजर रहेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आदेश। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसकी आधिकारिक सूचना राष्ट्रपति भवन को दे दी गई है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार यानी 5 जुलाई को 11 बजे राष्ट्रपति भवन में नए मंत्री शपथ लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के अलावा 4 अन्य लोगों को भी अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इराक में हुए बम धमाकों को लेकर प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने लापरवाही करने वाले सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की अजीत सारथी ने, रेहान फदल को, सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।